मलिक मोहम्मद जायसी, शब्दार्थ एवं टिप्पणी। त्रिवेणी सामान्यतः गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। यहाँ आचार्य शुक्ल के तीन आलोचनात्मक प्रबंधों जायसी, सूर, तुलसी के विशिष्ट अंशों के संग्रह को त्रिवेणी नाम दिया गया है। दास्तान हमजा। अमीर हमजा हजरत मोहम्मद के चाचा थे। इनकी कहानी को दास्तान हमजा कहते हैं। अकबर के आग्रह पर फैजी ने फारसी में यह कहानी लगभग 1800 पृष्ठों में लिखी थी। यह बहुत कुछ कल्पित है। इश्क हकीकी, वास्तविक प्रेम या ईश्वरीय प्रेम। कुतुबन मृगावती के रचयिता सूफी कवि। यह जौनपुर के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। इन्होंने 1503 ईस्वी में मृगावती की रचना की थी। चिश्ती वंश भारतवर्ष के चार प्रमुख सूफी संप्रदायों में से एक। भारत में इस संप्रदाय का प्रवेश ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के साथ हुआ था। चिश्ती साहब का जन्म 1142 ईस्वी में सिस्तान शहर में हुआ था। 1236 ईस्वी में अजमेर में इनका देहावसान हुआ। मधुमालती सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है। इसके रचयिता मंझन हैं। आचार्य शुक्ल ने इसकी एक फारसी अक्षरों में लिखी हुई प्रति देखने की बात कही है। अपने इतिहास में उन्होंने इसकी एक खंडित प्रति मिलने का उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसकी रचना विक्रम संवत 1550 और 1595 के बीच किसी समय हुई होगी। डॉक्टर राम पूजन तिवारी इसका रचना काल सन 952 हिजरी सन 1545 ईस्वी मानते हैं। उनके अनुसार मंझन कृत मधुमालती जायसी के पद्मावत के 5 वर्षों बाद लिखी गई है। प्रश्न यह है कि यदि मंझन कृत मधुमालती पद्मावत के बाद लिखी गई तो जायसी ने उसका उल्लेख कैसे किया। इससे यह सिद्ध होता है कि जायसी के पूर्व किसी अन्य कवि द्वारा रचित मधुमालती काव्य रहा होगा। महायान ईसा पूर्व पहली शताब्दी में बौद्ध धर्म दो अलग अलग मार्गों में विभक्त हो गया। वैशाली की संगीति में पूर्वी और पश्चिमी बौद्धों में इस सीमा का मतभेद उभर आया कि दोनों ने अपना अपना मार्ग अलग कर लिया। पूर्वी बौद्धों का मार्ग महायान कहलाया और पश्चिमी का हीनयान। महायान का अर्थ है श्रेष्ठ या उच्चतर मार्ग। यह प्रगतिशील समझा जाता है। हीनयान अपेक्षाकृत संरक्षणशील माना जाता है। आगे चलकर महायान तंत्र और योग से प्रभावित हुआ। एकांतिक प्रेम लोक व्यवहार से अलग अपने में ही पूर्ण प्रेम। मसनवी मसनवी का शाब्दिक अर्थ है दो। यह ऐसा काव्य रूप है जिसके प्रत्येक शेर के दोनों मिसरे एक ही रदीफ और काफिये में होते हैं। रदीफ का अर्थ तुकांत और काफिया का अर्थ समान ध्वनि वाले शब्द होता है। उर्दू और फारसी कविता में शेरों की रचना करते समय रदीफ के पहले जो समान ध्वनि वाले शब्द बनाए जाते हैं उन्हें काफिया कहते हैं। मसनवी के लिए 7 बहरे निश्चित हैं। शेरों की संख्या निश्चित नहीं है। छोटी मसनवियाँ 8-10 शेरों की और बड़ी हजारों की हो सकती हैं। फारसी में फिरदौसी का शाहनामा मसनवी शैली में ही लिखा गया है। श्रृंगार की दशाएं अभिलाष, चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण। दशम अवस्था का चित्रण प्रायः कविगण नहीं करते। मंजिष्ठा राग मंजीठ के रंग वाला या पक्का। उद्भव से लेकर परिपक्व होने तक राग या प्रेम की 3 स्थितियां होती हैं। नीला, कुसुम्भी और मंजिष्ठा। मनस्तत्व मनोविज्ञान साधनात्मक रहस्यवाद। साधकों द्वारा शारीरिक और मानसिक साधना द्वारा रहस्यमयी परोक्ष सत्ता की प्राप्ति कराने वाला सिद्धांत। परोक्षवाद किसी अज्ञात अपरिभाषीय परोक्ष सत्ता में विश्वास करने वाला सिद्धांत। कमला देवी गुजरात के राजा करण धेलो की रानी। इसने अलाउद्दीन खिलजी से ब्याह कर लिया था। देवल देवी कमला देवी की पुत्री थी। अलाउद्दीन का युवराज खिजर खां देवल देवी से प्रेम करता था। अमीर खुसरो ने इस प्रेम कहानी को लेकर प्रबंध काव्य की रचना की है। प्रोषित पतिका नायिका जिसका पति विदेश गया हो। ऊहात्मक अत्युक्ति परक अध्यवसान परिणाम निश्चय। अत्युक्ति या अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा में सिद्ध और साध्य का भेद होता है। व्याख्यात्मक टिप्पणी। अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा दोनों ही अलंकार हैं। दोनों में ही बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। दोनों में अंतर यह है कि अतिशयोक्ति में परिणाम संभावित न होकर सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए यदि कहा जाए कि शिवाजी के आने की बात सुनते ही शत्रुओं की स्त्रियां भय से रोने लगती हैं और उनके गांव जल में डूब जाते हैं, तो यहाँ अतिशयोक्ति या अत्युक्ति होगी। यहाँ शत्रुओं के गांवों का डूबना सिद्ध है। इसी बात को उत्प्रेक्षा के सहारे कहा जाएगा तो इस प्रकार कहा जाएगा, शिवाजी के नाम से आतंकित शत्रुओं की स्त्रियां उनके आने की सूचना पाते ही फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनका रोना देखकर लगता है कि उनका गांव डूब जाएगा। यहाँ गांव का डूबना सिद्ध नहीं है, डूबने की संभावना मात्र प्रकट की गई है। लक्षणा। शब्द की तीन शक्तियां मानी जाती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। लक्षणा में शब्द का अर्थ लक्षित होता है, अभिधा में वह सीधे व्यक्त होता है। लक्षणा शक्ति वहां होती है जहां मुख्यार्थ से काम नहीं चलता। उदाहरण के लिए यदि कहा जाए कि मुख चंद्र है, तो यहां अभिधा या मुख्यार्थ से काम नहीं चलेगा। मुख चंद्रमा कैसे होगा, यहाँ मुख्यार्थ में बाधा है। ऐसी स्थिति में रूढ़ी या प्रयोजन के सहारे मुख्य अर्थ से संबंधित दूसरा अर्थ लिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि मुख चंद्र के समान है। यह अर्थ लक्षित हुआ, इसलिए यहाँ लक्षणा मानी जाएगी। लक्षणा दो प्रकार की होती है, रूढ़ा और प्रयोजनवती। प्रयोजनवती के दो भेद होते हैं, गौणी और शुद्धा। मुख चंद्रमा के समान है, यह अर्थ कहने वाले के प्रयोजन को ध्यान में रखकर लिया गया है, इसलिए यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा हुई। प्रयोजनवती में भी यहाँ गौणी मानी जाएगी, क्योंकि गौणी लक्षणा में मुख्यार्थ और लक्षित अर्थ में सादृश्य संबंध होता है। यहाँ मुख और चंद्रमा में सौंदर्यगत सादृश्य है। कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध। जो कथन सत्य न हो किंतु कवियों की परंपरा में सत्य मानकर प्रयुक्त होता हो। हेतुत्प्रेक्षा। जहाँ उत्प्रेक्षा का हेतु कल्पित हो, अर्थात अप्रस्तुत वस्तुओं का स्वरूप सत्य हो, केवल उस स्वरूप का कारण कल्पित हो। इंतहाय लागरी, अत्यधिक कृशता। तिनौर, तिनके का खाट। साठी, पूंजी। नाठी, नष्ट हो गई। दुहेली, संकटग्रस्त। चित्रा मित्र, चंद्रमा। मीन, मीन राशि। पाटलायाम गवी, पाटल लाल के रंग वाली गाय। तस्थिवांसम, उसके ऊपर बैठा हुआ गाय की पीठ पर आसीन। धातु मैयाम अधित्यकायाम, गेरु की पहाड़ी पर। लोध्रद्रुमम, लोध का वृक्ष। सानु, ढाल, पहाड़ी की ढलान। धनुर्धर राजा दिलीप ने लाल रंग की गाय की पीठ पर आसीन सिंह को देखा। वह ऐसा लग रहा था जैसे गेरू की पहाड़ी की ढलान पर पीले फूलों वाला लोध्र का वृक्ष हो। अद्वैतवाद, परम तत्व को अगम, अगोचर, अनिर्वचनीय मानने वाला दार्शनिक सिद्धांत। यह द्वैतवाद को अस्वीकार करता है। यह मात्र आत्मा या ब्रह्म को सत्य मानता है और उसे नेति नेति कहकर निरूपित करता है। हाल की दशा। वह मनोदशा जिसमें सूफी साधक अपने को भूलकर कुछ समय के लिए खुदा में लीन हो जाता है, जैसे शराब और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार की हाल अवस्था में खुदा और बंदा मिलकर एक हो जाते हैं। सर्ववाद। आचार्य शुक्ल ने इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्द पैनथिज्म के अर्थ में किया है। इसका अर्थ वे ब्रह्म और जगत की एकता मानते हैं। वस्तुतः पैनथिज्म के लिए उपयुक्त शब्द सर्वेश्वरवाद है। एकेश्वरवाद। वह धर्म या धर्म दर्शन जिसमें एक ईश्वर को ही जगत का कर्ता और नियंता माना जाता है। इस्लाम में ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं मानी जाती, इसलिए उसमें उदारता न होकर कट्टरता है। मायावाद। सामान्यतः यह नाम रूपात्मक जगत या प्रकृति का व्यक्त पसारा परमेश्वर की माया है। यह माया त्रिगुणात्मक सत रज तम है। ब्रह्म तीनों गुणों से परे है, वही एकमात्र सत्ता है। यह नाम रूपात्मक जगत अर्थात नानात्व असत है। इस सिद्धांत को ही मायावाद कहते हैं। इस प्रकार नानात्व का असत होना मायावाद है।